السلام علیکم و رحمت اللہ. اذان دے دیں. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون آج کل اسماء باری تعالیٰ کے بیان کا ایک سلسلہ شروع ہے اور آج بھی اسی سے متعلق انشاءاللہ میں کچھ مزید امور آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. لیکن آج مجلس سے خداوند الحمدیہ جرمنی کا 16th سالانہ اجتماع بھی شروع ہو رہا ہے اور اس اجتماع کے لیے چونکہ خصوصیت سے یہی جمعہ افتتاحی اعلان کے لیے بھی رکھا گیا ہے, اس لیے ابتدا میں میں چند لفظ مجلس خداوند الحمدیہ جرمنی کے اس سالانہ اجتماع سے متعلق کہتا ہوں. اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ جماعت جرمنی ہر پہلو سے ہر شعبے میں کے لحاظ سے ترقی کی طرف تیزی کے ساتھ رواں رواں ہے اور ذیلی تنظیمیں اپنے اپنے مقام اور مرتبے کو سمجھتے ہوئے عمومی طور پر جماعت کا ایک صحت مند جز بنی ہوئی ہیں اور ان کی اپنی صحت کے لیے ضروری ہے کہ وہ جماعت کے بدن کا ایک جز بن کر رہیں, اس سے الگ اپنی کوئی ایسی شخصیت نہ بنا بیٹھیں جیسے ایک بدن کے اندر کوئی بیرونی شخصیت پیدا ہو جاتی ہے. یہ اس لیے ضروری ہے کہ اگر ایک بدن کا کوئی عضو یا کسی عضو کا کوئی حصہ اپنا الگ تشخص بنا بیٹھے تو اسی کا نام کینسر ہوا کرتا ہے اور یہ کینسر پھر باقی بدن کو بھی کھا جاتا ہے. اس لیے نظام جماعت کے متعلق حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسلمان کی تعریف فرمائی ہے وہی صادق آئے تو یہ نظام زندہ رہے گا ورنہ ختم ہو جائے گا. آپ نے فرمایا مومن ایسے بھائی بھائی ہیں کہ گویا ایک بدن کے اعضاء ہیں اور بدن میں اگر پاؤں کی انگلی کے کنارے پر بھی کوئی تکلیف پہنچے تو سارا بدن بے چین ہو جاتا ہے. اس لیے مجلس خدام الحمدیہ ہو یا مجلس انصار اللہ یا مجلس لجنہ ماء اللہ یا ذیلی تنظیمیں یا اور کئی قسم کے ذیلی گروہ ہوں جو خدمت دین کے لیے بنائے جاتے ہیں, وہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ وہ ایک بدن کا حصہ رہ کر ہی زندہ رہ سکتے ہیں اور ایک بدن کا حصہ رہ کر ہی دوسرے بدن کے لیے خوشخبری کا پیغام بنتے ہیں. ورنہ اگر انہوں نے اپنا الگ تشخص قائم کرنے کی کوشش کی تو باقی سب بدن کے لیے نحوست اور لعنت کا پیغام بن جائیں گے. اس پہلو سے مجھے یہ کہتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے اور دلی اطمینان کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے اگر شروع میں کبھی کچھ ذیلی گروہوں کی طرف سے سر اٹھانے کے رجحانات پیدا بھی ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو یکسر مٹا دیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ رجحانات بھی لا علمی یا غلط فہمی کی وجہ سے ہوئے تھے, عدم تربیت کا نتیجہ تھے, دلوں میں کوئی ایسی کجی نہیں تھی کہ وہ ایک مستقل خطرہ بن جاتے. بس الحمدللہ اس وقت جماعت جرمنی ایک ہاتھ کے نیچے اسی طرح اکٹھی ہے جس طرح اسلام کا تصور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا ہے. سب ایک ہی بدن کا حصہ ہیں, ایک دوسرے کی خوشی کو محسوس کرنے والے, ایک دوسرے کے غم سے تکلیف اٹھانے والے, اور مرضی سے خدا الحمدیہ اس پہلو سے مبارکباد کی مستحق ہے کہ اگرچہ ایک بہت بڑی اور فعال جماعت ہے جو جماعت احمدیہ جرمنی کے بدن کا سب سے بڑا حصہ ہے, کیونکہ یہاں نوجوانوں کی تعداد دوسروں کے مقابل پر باقی دنیا کی جماعتوں سے زیادہ ہے. اس کے باوجود انہوں نے اپنے عز اور انکساری کے مقام کو خوب سمجھا ہے اور کبھی اشارتاً بھی کوئی ایسی بات ظاہر نہیں ہونے دی جس سے خود سری کی بو آتی ہو. بس اسی نہج پر آگے بڑھتے رہیں, اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اور اجتماعی برکتیں آپ کو نصیب ہوں. برکتیں ہیں ہی وہی جو اجتماعیت سے حاصل ہوتی ہیں, ورنہ انفرادیت تو دراصل موت کا پیغام ہے. انفرادیت نظام کے بکھرنے کو کہتے ہیں, اور حقیقت یہ ہے کہ ترکیب اجزاء ہی سے زندگی بنتی ہے, اور جب ترکیب اجزاء منتشر ہونے لگتی ہے تو اسی کا نام موت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ کی ابدی زندگی عطا فرمائے, روحانی لحاظ سے آپ کی صحت دن بدن بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائے, اور جماعت کا پہلے سے بڑھ کر ایک فعال حصہ بن سکیں. خطبات کے تعلق میں میں عالم الغیب کا مضمون بیان کر رہا تھا, اور اس کے بعد پھر رحمان اور رحیم کے مضمون میں بھی داخل ہوئے تھے, لیکن عالم الغیب کے تعلق میں ایک یہ بات بھی بیان کرنی ضروری ہے کہ جہاں تک مومن کی زندگی کا تعلق ہے, اس کا غیب خدا کے قبضہ قدرت میں ان معنوں میں ہے کہ اس کے غیب سے ہمیشہ مومن کے لیے ایسے امور رونما ہوتے ہیں جو اس کے دل کو پسند ہوں, اس کی خواہشات کے مطابق ہوں. تکلیفیں ظاہر ہوتی ہیں تو تھوڑی, اور خوشیوں کا حصہ ہمیشہ غالب رہتا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی مضمون کو یوں بیان فرمایا کہ غموں کا ایک دن اور چار شادی, فسبحان الذی افضل عادی. ایک غم کا دن ہے تو چار شادیوں خوشیوں کے دن خدا دکھاتا ہے, اور اس طرح دشمنوں کو ذلیل کرتا چلا جاتا ہے. مومنوں کا غیب محفوظ ہے کیونکہ ایک پیار کرنے والے خدا کے قبضہ قدرت میں ہے, لیکن دشمنوں کا غیب ہمیشہ ذلیل اور رسوا کن ہوتا ہے. خود بھی ذلیل اور اوروں کو بھی ذلیل کرنے والا. اس وجہ سے جوں جوں غیب سے پردے اٹھتے ہیں مومن کے وہ زیادہ خوشخبریاں ملنی شروع ہوتی ہیں, اور جوں جوں غیب سے پردے اٹھتے ہیں دشمن کی شہادت جو بظاہر خوشی سے لبریز ہوتی ہے, یعنی اس کی حاضر زندگی, وہ تکلیفوں اور دکھوں اور مایوسیوں میں تبدیل ہونے لگتی ہے. یہ ایک ایسی جاری تقدیر ہے, ایک سنت اللہ ہے جس میں آپ کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہوتے دیکھیں گے. بس اس پہلو سے کامل یقین کے ساتھ آگے بڑھیں کہ پردہ غیب میں جو کچھ بھی ہے ہمارے لیے بہتر ہے, اور دشمن کے لیے اس میں رسوائیاں اور ناکامیاں ہیں. یہ یقین ہے جو عمل کو مزید طاقت بخشتا ہے. اپنی آخرت پر, اپنے انجام پر یقین قوموں کے لیے بہت قوت اور یکجہتی کا باعث بنتا ہے. ان کی اجتماعیت کو قائم رکھنے میں یہ یقین بہت گہرا اثر ڈالتا ہے. بس اس پہلو سے ہم عالم الغیب غیب خدا کی حضور ہمیشہ سجدہ ریز رہیں گے کہ وہ اپنے غیب سے ہمارے لیے جو کچھ بھی نکالے, خیر کے سامان نکالے, اور دشمن دن بدن ناکامی اور نامرادی کا منہ دیکھتا رہے, بس پردہ غیب سے اس کے لیے تو نامرادیاں نکلتی رہیں اور ہمارے لیے کامیابیاں اور خدا تعالیٰ کی طرف سے عطا ہونے والی خوشخبریاں. اس پہلو سے ابھی چند دن کا ایک ذکر ہے. مجھے خیال آیا کہ اس موقع پر میں آپ کو بتاؤں کہ خوف تو مومن کو بھی ان معنوں میں ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہم اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر سکیں گے کہ نہیں, مگر خوف مومن پر غالب نہیں آتا, مایوسی میں نہیں تبدیل ہوتا. چند دن پہلے تک جماعت احمدیہ جرمنی کی طرف، خدام الحمدیہ جرمنی کی طرف سے، ان کے شعبہ تبلیغ کی طرف سے بہت پریشانی کے خط مل رہے تھے کہ بہت محنت کر رہے ہیں، بہت کوشش کر رہے ہیں، مگر پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ ابھی تک ہماری کوششوں کو کامیابی کے پھل نہیں لگے. چنانچہ انہوں نے خطوں میں لکھا کہ ہم دعا کی غرض سے یہ بات لکھ رہے ہیں، لیکن نہ مایوس نہیں ہیں، اللہ اپنا جب چاہے گا اپنا فضل فرمائے گا. آنے سے ایک دو روز پہلے مجھے اچانک جماعت جرمنی مجلس خدا رحمدیہ جرمنی کے جو انچارج ہیں اس گروپ کے، ان کی طرف سے خوشخبری کا خط ملا کہ اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا ہے اور اس طرح اچانک پھل گرنے شروع ہوئے ہیں جیسے پکنے کا انتظار کر رہے تھے، اور اب ہر طرف سے خوشیوں کی خبریں مل رہی ہیں، اور ہماری توقع کے بالکل برعکس اور خلاف یہ تبلیغ، ہماری تبلیغ میں غیر معمولی کامیابی ہونی شروع ہو گئی ہے. انہوں نے لکھا کہ پہلے بوسنین اور البینین بات سنتے بھی تھے تو مثبت نتیجہ ظاہر نہیں کرتے تھے اور کچھ شکوں میں مبتلا رہتے تھے. اب اچانک ہر طرف سے اطلاعیں ملنی شروع ہوئی ہیں کہ اتنے سو وہاں ہو گئے، اتنے سو ادھر ہو گئے، اور خود بخود رابطے کر کے وہ بیت کی خواہش ظاہر کرتے ہیں اور خدا تعالیٰ کے فضل سے شامل ہو رہے ہیں. اس پہلو سے جو اعداد و شمار ہیں وہ کل تک کے یہ تھے کہ جو پہلے بیتیں سینکڑوں میں تھیں، میرے یہاں آنے سے پہلے 4,200 ہو چکی تھی صرف جماعت جرمنی کا حصہ، نہ خدام الحمدیہ جرمنی کا. اور کل جو ہماری مجلس لگی ہے بوسنین اور البینینز کے ساتھ، اس میں 1,082 بیتیں اور شامل ہو گئیں. تو اب خدا کے فضل سے 5,282 بیتیں مجلس خدام الحمدیہ جرمنی کے حصے میں آئی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک بڑی کامیابی ہے. مگر ابھی کافی سفر باقی ہے. انہوں نے 10,000 بیتوں کا عہد کیا تھا، اور جیسا کہ میں نے بیان کیا چند ہفتے پہلے تک تو صرف چند سو تھیں، اب خدا نے جب رفتار تیز فرمائی ہے سینکڑوں کو ہزاروں میں بدلا ہے. تو آپ کو بھی دعا کرتے رہنا چاہیے اور پورے زور سے آخری کوشش کرنی چاہیے کہ جلسہ سالانہ یو کے تک جو سال ختم ہوتا ہے اسے پہلے پہلے آپ اپنا ٹارگیٹ 10,000 پورا کر سکیں، اور اللہ چاہے تو اس کے علاوہ اور بھی آپ کو عطا فرمائے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں غیب کی پر بحث فرمائی ہے، وہاں ایک عجیب معنی اس سے خدا تعالیٰ کے ہمیشہ ہونے کا نکالا ہے، اور یہ کلام ظاہر کرتا ہے کہ کس حد تک حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عرفان عطا فرمایا تھا. کیونکہ تمام اسلامی لٹریچر میں اس پہلو سے غیب کے مضمون کو نہ سمجھا گیا نہ اس کو روشنی ڈالی گئی. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عالم الغیب کا ایک مطلب یہ ہے کہ وہ جانتا ہے کب اس نظام کو توڑ دے گا اور قیامت برپا کر دے گا، اور اس کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ ایسا کب ہوگا. یہ جو عبارت ہے اس کو گہرائی میں اتر کر سمجھنے کی ضرورت ہے. امر واقعہ یہ ہے کہ ہم جو بھی شعور رکھتے ہیں، خواہ انسان ہوں یا ادنا سے ادنا جانور، ایک گوبر کا کیڑا ہو، وہ کچھ نہ کچھ شعور رکھتا ہے، اور اپنے اپنے شعور کے مطابق اس کا ایک عالم ہے. اس کے آگے اور پیچھے سب غیب ہے، اور غیب کا علم صرف خدا کے لیے ہے، کیونکہ وہ شخص جو مرتا ہے اس کے ساتھ پورا عالم مر جاتا ہے، اس کا غیب بھی ساتھ ہی فنا ہو جاتا ہے. بس اگر کچھ اندازے کرتا بھی ہے کہ آئندہ کیا ہوگا، تو وہ اندازے اس کی زندگی تک ہیں. اس کی فنا کے ساتھ اس کا غیب بھی مٹ جاتا ہے، کچھ بھی باقی نہیں رہتا. تو عالم الغیب خدا کا مطلب یہ ہے کہ اس کے غیب کا کوئی کنارہ نہیں ہے. कोई अजल में ऐसा मकाम नहीं है जहां के गैब का उसको इलम ना हो, जिसका मतलब यह है कि वो अजल से है। अगर वो अजल से ना हो तो उसको आलिमुल गैब कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि आप माजी में सफर शुरू करें, जहां जाकर आप गैब के इल्म को, खुदा के गैब के इल्म को खत्म समझेंगे वही खुदा का वजूद खत्म हो जाएगा, लेकिन गैब बाकी होगा। बस जब अल्लाह फरमाता है कि वो आलिमुल गैब है तो माजी में भी आखिरी किनारे तक आप सोचते चले जाएं, उसके बाद फिर और मजमून आगे बढ़ जाएगा। और हकीकत में गैब का ना माजी में कोई किनारा है ना मुस्तकबिल में कोई किनारा है। बस आलिमुल गैब का मतलब यह है कि उसे फना नहीं और दूसरी चीजों को फना है, क्योंकि उसके सिवा कोई और चीज आलिमुल गैब नहीं है। बस आलिमुल गैब ना होना फना की दलील है, और आलिमुल गैब होना लामुतनाही बका की दलील है। माजी में भी हमेशा से है और मुस्तकबिल में भी वो हमेशा से रहेगा। इस मजमून को हजरत मसीह मौऊद अलैहि सलाम ने आलिमुल गैब से यूं निकाला कि फरमाया वो जानता है कि क़यामत कब आएगी, यानी हर दूसरे का गैब खत्म हो जाएगा। वो मरसा शहूद में जो उभरते हैं आर्जी तौर पर ये सिलसिला जारी रहता है, मगर एक ऐसा वक्त आएगा कि खुदा के गैब में कोई भी शरीक नहीं रहेगा। और वो जो गैबूबियत गैब का मजमून है आखिरी, ये खुदा के बाकी रहने और गैरुल्लाह के कुल्लियतन मिट जाने का मजमून है जो हजरत मसीह मौऊद अलैहि सलाम ने आलिमुल गैब की तशरीह में बयान फरमाया। फरमाते हैं उसके सवा वो जानता है कि कब इस निजाम को तोड़ देगा और क़यामत बर्पा कर देगा, और उसके सवा कोई नहीं जानता कि ऐसा कब होगा। सो वही खुदा है जो इन तमाम वक्तों को जानता है। ये वक्तों को जानने वाला वही मजमून है जो मुझे रोया में दिखाया गया था कि अल्लाह वक्त से बाला है और उस पर वक्त नहीं गुजरता। बस वो जो माजी के वक्त को भी जानता है और मुस्तकबिल के वक्त को भी जानता है, उसका माजी में होना वक्त से बाला और मुस्तकबिल में होना वक्त से बाला ये कसी तौर पर साबित होता है। यानी वक्त उसको उसमें कोई तब्दीली ऐसी पैदा नहीं करता कि माजी का खुदा हाल के खुदा से अलग हो चुका हो और हाल का खुदा मुस्तकबिल के खुदा से जुदा हो गया हो। उसकी सिफात में कोई ऐसी तब्दीली वाकया नहीं होती कि जिससे देख कर हम कह सकें ये पुराने वक्त की बातें हैं, उस वक्त खुदा ऐसा हुआ करता था, या ये आज की बात है कल ऐसा नहीं रहेगा। बस खुदा का वक्त से बाला होना उसके हमेशा होने के साथ एक ऐसा ताल्लुक रखता है जिसका हजरत मसीह मौऊद अलैहि सलाम ने आलिमुल गैब से ताल्लुक जोड़ के इस मजमून को हम पर रोशन फरमाया। एक और मजमून इसमें यह काबिल तवज्जो है कि ये जितने भी सिफात जितने भी अस्माए बारी ताला बयान हो रहे हैं इनके आगाज में अल्लाह ने एक उनवान लगाया है और वह है हुवल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु, वही एक अल्लाह है, उसके सिवा और कोई माबूद नहीं। बस जितनी भी सिफात बारी ताला बाद में बयान होती हैं उनका दरअसल तौहीद के की आखिरी सूरत से ताल्लुक है, जो सबसे आला शान की तौहीद है वो इससे जाहिर होती है। बस इससे ताल्लुक में हजरत मसीह मौऊद अलैहि सलाम जो इन आयात की तशरीह फरमा रहे हैं उनको गौर से पढ़ें तो और नए से नए दिलचस्प और दिलकश मजामीन उभरते चले आते हैं। हजरत मसीह मौऊद अलैहि सलाम फरमाते हैं, फिर फरमाया हुवर रहमानुर रहीम, ये मैं पहले बयान कर चुका हूं। फिर फरमाते हैं या रहीम के मुतल्लिक भी मैं कुछ बयान कर चुका हूं, अगरचे बहुत वसी मजमून है और मैं इसलिए मैंने मुख्तसर बयान किया था कि जब मैं इंग्लिस्तान आया था तो मुसलसल 2-3 साल दरसों में जो रमजान में दर्स होते थे उसमें इन्हीं सिफात पर बहस गुजरी है, यानी सूरह फातिहा के آغاز میں جو چار صفات باری تعالیٰ بیان ہوئی ہیں, رب العالمین, رحمان, رحیم, مالک یوم الدین, تو چونکہ وہ مضمون بیان ہو چکا ہے اور بعد میں بھی درس کے دوران مختلف جگہ دہرایا گیا ہے, اس لیے میں ان خطبات سے اس حصے کچھ نکال دی چھوڑ دیا ہے, الگ کر دیا ہے, ورنہ یہ خطبات کا سلسلہ پھر بہت لمبا ہو جاتا. تو اگر کسی کو دلچسپی ہے تو ان صفات, بنیادی صفات باری تعالیٰ سے متعلق پرانے درسوں کی کیسٹ وغیرہ حاصل کر لیں, ان میں انشاء اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی روشنی کے سامان ملیں گے. پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مالک یوم الدین کا ذکر فرماتے ہیں, یعنی وہ خدا جو ہر ایک کی جزا اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے, اس کا کوئی ایسا کار پرداز نہیں جس کو اس نے زمین و آسمان کی حکومت سونپ دی ہو اور آپ الگ ہو بیٹھا ہو. یہاں یہ بات یاد رکھنے کے لائق ہے کہ جو آیات میں نے تلاوت کی تھیں, حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ان آیات کی تفسیر کے دوران سورہ فاتحہ کو بھی داخل فرمایا ہے اس کے آغاز کو, کیونکہ ان کے بغیر, ان کے سہارے کے بغیر ان آیات کی پوری حقیقی سمجھ نہیں آ سکتی. سورہ فاتحہ چونکہ ام الکتاب ہے, یعنی تمام قرآن کریم کی ماں ہے, ان معنوں میں کہ ماں کے پیٹ سے بچہ جو صفات لے کر پیدا ہوتا ہے وہ نشو و نما پا کر پھر پھیل جاتی ہیں اور اس کی ساری زندگی پر محیط ہو جاتی ہیں. دیکھنے میں باہر آ کر انسان بہت ترقی کرتا ہے اور یقین نہیں آ سکتا کہ وہی بچہ تھا جو ماں کے پیٹ میں تھا, مگر ایک بھی صفت وہ بعد میں اپنی خود بنا نہیں سکتا. وہ تمام تر مادے جو اس کے اندر صلاحیت کے موجود ہیں وہ ماں کے پیٹ سے لیتا ہے, اگر نہ لے کر چلے تو وہ کبھی حاصل نہیں کر سکتا. اسی لیے ڈاکٹر جب کوئی مریض دکھایا جائے اور اس سے وہ مایوسی کا اظہار کریں تو بسا اوقات کہتے ہیں کہ یہ کنجینیٹل کیس ہے, یعنی کنجینیٹل اندھا ہے, مادرزاد اندھا ہے, اس کے فلاں اعصاب ماں کے پیٹ میں پیدا ہی نہیں ہوئے تھے, اس لیے اس کا کوئی علاج نہیں ہے. امر واقعہ یہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں بعد میں بننے والا انسان تمام تر ایک بلو پرنٹ کے طور پر بن جاتا ہے, اور جو بن گیا بن گیا, اس کے بعد کچھ نہیں بن سکتا. بس اسی لیے صفات باری تعالیٰ جو سورہ فاتحہ میں بیان ہوئی ہیں ان کا تعلق تمام قرآن کریم سے ہے, اور قرآن کریم میں اسماء الہی جس جس رنگ میں بھی ملتے ہیں, ان کا ذکر ملتا ہے, ان کی تشریح ملتی ہے. ان کو مزید سمجھنے کے لیے ان چار بنیادی صفات کو سمجھنا ضروری ہے, اور ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق قائم ہوگا. اس لیے اگرچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام وہی اسی صورت پر گفتگو فرما رہے ہیں, عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم, لیکن بیچ میں سورہ فاتحہ کی یہ صفات داخل فرما کر پھر مضمون کو دوبارہ واپس انہی آیات کی طرف لے جاتے ہیں. یہاں فرمایا مالک یوم الدین, وہ جزا سزا کے دن کا مالک ہے, جس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی ایسا کار پرداد نہیں جس کو اس نے زمین و آسمان کی حکومت سونپ دی ہو اور آپ الگ ہو بیٹھا ہو اور آپ کچھ نہ کرتا ہو. وہی کار پرداز سب جزا سزا دیتا ہے اور دیتا ہو اور آئندہ دینے والا ہو, یعنی خدا کے سوا کوئی ایسا نہیں ہے جس کے سپرد جزا سزا کا نظام اللہ تعالیٰ نے سونپ دیا ہو اور خود الگ ہو بیٹھا ہو. یہ مضمون سمجھ کر توحید کا مضمون ایک نئی شان کے ساتھ ابھرتا ہے, اور غیر اللہ سے انسان کلیتاً مستغنی ہو جاتا ہے. کیونکہ دنیا میں تو یہ دیکھا گیا ہے کہ بعض لوگ اپنے ماتحتوں کو کچھ نہ کچھ جزا سزا کے اختیار دیتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں لوگ ان کی محتاجی ہمیشہ محسوس کرتے ہیں, اگرچہ محبوب کوئی اور ہی ہو, مگر اس کے نوکروں کی خوشامدیں کرنا بھی दुनिया की शायरी में आपको हर जगह मज़मून मिलता है। गालिब इस मज़मून को यूं बयान करता है कि वहां गया भी मैं तो उसकी गालियों का क्या जवाब, याद थी जितनी दुआएं सरफे दरबा हो गईं। यानी जितनी मुझे दुआएं याद थी वो तो मैं दरबान को दे बैठा हूं कि किसी तरह वो चौकट खोले, मुझे चौकट से गुजर कर महबूब तक पहुंचाने की इजाजत, पहुंचने की इजाजत दे दे। अब उसने जो गालियां दी हर गाली का मैंने जवाब दुआ से दिया, और जितनी दुआएं थी वो दरबान के हुजूर सर्फ कर डाली हैं। अब ऊपर जाकर जो मेरी शामत आएगी और वहां से जो मुझे गालियां मिलेंगी मैं उनका क्या जवाब दूंगा, वो तो मैं दरबान को दे बैठा हूं। ये मजमून है। और एक और शेर में वो ये कहता है कि गदा समझ के वो चुप था, मेरी जो शामत आई उठा और उठ के कदम मैंने पासबान के लिए। कि मुझे पासबान जो मेरे महबूब की ड्यूटी पर बैठा हिफाजत कर रहा है, वो पहले समझा था कि वो फकीर आया है और खामोश बैठा हुआ था। मुझे जो ख्याल शौक चढ़ा कि मैं इसको खुशामद करूं ताकि इसके जरिए से मुझे रसाई हो, तो उठकर मैंने उसके कदम थाम लिए। अब वो समझ गया कि फकीरों की तो ये आदत नहीं है कि पासबानों के कदम थामे, ये है किसी और कोई मखलूक आई है। चुनाचे उसने फिर मेरे साथ जो सलूक किया वो मेरी शामत आई के लफ्जों में बयान हुआ है। तो अल्लाह ताला ने इस पहलू से किसी को पासबान मुकर्रर नहीं फरमाया, यहां तक कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी फरमाता है वो मानता अलैहिम बिमुसैतिर, तू उन पर दरोगा नहीं, तू ना उनको कुछ देगा ना उनसे कुछ ले सकता है, मैं ही हूं जो अपनी मखलूक से जैसा चाहूं सलूक करूं। इसलिए आखिरी मालिक, मालिक यौमिद्दीन वो है जिसका मतलब यह है कि उसके सिवा किसी के पास हमारे लिए ना कुछ देने के लिए है ना छीनने के लिए कुछ है। बस हर दूसरी चौकट से ये मजमून आजादी दिलाता है, इंसान को कामिल तौर पर गैरुल्लाह से आजाद करने वाला मजमून है जो हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम इस जिक्र में बयान फरमाकर फिर अल मलिकुल कुद्दूस की बात करते हैं। यानी ये एक जिमनी बात थी ताकि मालिक के मजमून को भी समझें और फिर मलिकुल कुद्दूस जो कुरान करीम में इन आयात के अंदर बयान हुआ है जो मैंने अभी आपके सामने तिलावत की थी उस मजमून को समझाते हुए फरमाते हैं, यानी वो खुदा बादशाह है जिस पर कोई दाग ऐब नहीं। अब ये पहली दफा एक ऐसा मजमून है जो आपको मलिक और कुद्दूस की तफसीर में दिखाई देगा। हर तफसीर यहां बिल्कुल नहीं है और ऐसी तफसीर है जो लाजिमन इल्हामी है, उसके बगैर इंसान की इन उमूर तक रसाई मुमकिन नहीं है। अल मलिक को तमाम तफासीर में अलग बांधा जाता है, इस पर अलग बहस की जाती है और कुद्दूस पर अलग बहस की जाती है। हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल मलिकुल कुद्दूस का मतलब है ऐसा बादशाह जो हर ऐब से पाक बादशाह है, और कुद्दूस के साथ मिलाए बगैर खुदा की मलकियत की कुछ समझ नहीं आ सकती, और उसकी शान जाहिर करने के लिए लाजिम है कि हम उसे कुद्दूस के साथ इकट्ठा इन मानों में पढ़ें कि वो मलिक जो हर ऐब से पाक है। ये मजमून बयान करते हुए हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वो खुदा बादशाह है जिस पर कोई दाग ऐब नहीं, ये जाहिर है कि इंसानी बादशाहत ऐब से खाली नहीं है। यानी हर दूसरी बादशाहत से मलकुल कुद्दूस के जो ब्रैकेट है इकट्ठी, इसने अल्लाह को मुमताज करके अलग कर दिया। किसी और बादशाह को अल्लाह ताला से इन मानों में कोई मुशाबियत नहीं रही, बावजूद इसके कि हर बादशाह बादशाह ही कहलाता है। फर्क क्या है, वो बादशाह कुद्दूस नहीं है और अल्लाह कुद्दूस है। कुद्दूस होने के नतीजे में उसकी बादशाहत में क्या फर्क पैदा होता है, इस जिक्र में हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ये जाहिर है कि इंसानी बादशाहत ऐब से खाली नहीं। अगर मसलन तमाम रायत जलावतन होकर दूसरे मुल्क की तरफ भाग जावे तो फिर बादशाही कायम नहीं रह सकती। यानी बज़ाहिर बादशाह हुक्मरान है और मखलूक उसकी मोहताज है। आप फरमाते हैं अगर बनजर गौर देखो तो दुनिया का बादशाह इतना बेख्तियार है कि उस वो अपनी रईयत का मोहताज है, जबकि अल्लाह अपनी मखलूक का मोहताज नहीं है। और अगर रईयत ये फैसला कर ले कि हम इस वतन को छोड़ देते हैं तो बादशाह अकेला अपनी अपनी बादशाही की जूतियां टलखाता फिरेगा, नहीं कुछ भी उसके पास बाकी नहीं रहेगा सिवाय इसके कि अपना कदम अपने हाथ जो जात की ताकत है उससे बढ़कर उसकी कोई भी ताकत नहीं रहेगी। लेकिन अल्लाह ताला इस किस्म का बादशाह नहीं है, क्योंकि ये तो एक ऐब है कि एक बादशाह अपनी रईयत से ताकत हासिल करे और कुलियतन उसका मोहताज हो। ये एक ऐसा ऐब है जो खुदा की बादशाही में नहीं है। फिर आप फरमाते हैं अगर मसलन तमाम रईयत कहत ज्यादा हो जाए तो फिर खराज शाही कहां से आएगा। अब कहत का वारिद होना या ना वारिद होना ये भी बादशाहत के की अजमत या उसकी मफलूकुल हाली से ताल्लुक रखने वाला मजमून है। एक मुल्क को खुदा ताला कहत ज्यादा कर दे तो बादशाहत जारी नहीं रह सकती, ना खराज मिलेगा ना रईयत के लिए कुछ पेट भरने के सामान बादशाह मुहैया कर सकता है। नतीजतन इसके फसाद फैलते हैं, बगावतें होती हैं और खजाने खाली हो जाते हैं, यहां तक कि बाज़ दफा फौज और पुलिस को देने के लिए भी कुछ बाकी नहीं रहता। इसी किस्म के एक कहत का जिक्र सूरह यूसुफ में मिलता है। उस बादशाही को सहारा मिला तो अल्लाह की बादशाही से मिला, और यह मजमून है जो खासतौर पर पेश नजर रखना चाहिए। सूरह यूसुफ बड़े गहरे मजामीन से भरी पड़ी है। उसमें एक ये भी है कि दुनिया के बादशाह का यह हाल था कि उसको तो गैब की इतनी भी खबर नहीं थी कि कल क्या होने वाला है, कल ये मुल्क किस तरह कहत ज़दा हो जाएगा, और अगर पेशबंदी ना की गई तो सब कुछ हाथ से जाता रहेगा। बड़े आराम से बैठा हुआ था। उस मुल्क को कहत से बचाने वाला वो बादशाह था जिसे खुदा ने बादशाह अता फरमाई थी, जो मलिकुल कुद्दूस का नुमाइंदा था। उसको खुदा ने खबर दी और उसके नतीजे में दुनिया की बादशाहत बचाई गई। बस असल वो बादशाह है जो हर दूसरी बादशाहत का सहारा बनता है, अगर सहारा बने, और अगर ना बने तो हर दूसरी बादशाहत हलाक हो सकती है। इस ज़मन में मैंने आपसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ने जो गैब का मजमून बांधा है अपने ताल्लुक में उसका भी जिक्र किया था। उन्होंने खजाने की चाबियां लेने से इनकार कर दिया या कोई भी ओहदा कबूल करने से इनकार कर दिया, हत्ता के आजादी से भी इनकार कर दिया, जब तक पहले यह साबित ना हो जाए कि उन्होंने गैब में उस औरत के खावन से बेवफाई या गद्दारी नहीं की थी जिसके घर वो पले थे। और आजादी किसको प्यारी नहीं होती, मगर आपने कहा नहीं, मैं ऐसी आजादी पर थूकता भी नहीं जिसके साथ बद्यांती का दाग साथ लगा रहे, हमेशा लगा रहे। बस बादशाह से कहो तुम्हारा शुक्रिया, मैं बाहर नहीं आऊंगा जब तक ये साबित ना करो, पता ना कर लो कि मैं वाकई खयानत वाला था या खयानत किससे पाक था। जब ये पता चल गया कि गैब में उन्होंने खयानत नहीं की थी तब वो बाहर तशरीफ लाए, और खुदा ताला ने देखें किस शान से इस अमानत का हक अदा किया कि सारे मुल्क की अमानत की चाबियां आपके सपुर्द कर दी और सारे मुल्क के अमीन बनाए गए। अब एक और बात भी जो वहां मैंने पिछले खुतबे में ज़िमनन जिक्र की थी मगर उस वक्त खोल नहीं सका था, मुझे याद आई है तो वो भी साथ पेश करता हूं। वो ये है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दयानत और तकवा की खातिर अपने ऊपर दाग नहीं लगने दिया। उसके नतीजे में खुदा ताला ने सिर्फ यही फजल नहीं किया कि उस वक्त आपको सारे खजानों की कुंजी थमा दी गई, बल्कि बचपन में जो झूठा एक इल्जाम लगा था उसका दाग भी इसी वाकया के नतीजे में धोया गया है। क्योंकि जब वो यूसुफ के भाई आए और फिर वो चोरी का इल्जाम लगा, तो उस वक्त वो चोरी का इल्जाम दो तरह से हजरत यूसुफ के हक में काम आ गया। अव्वल ये कि हजरत यूसुफ के भाई जिन्होंने हजरत यूसुफ पर चोरी का इल्जाम लगाया था, उन पर चोरी का इल्जाम लग गया और वो खुद सजा पा गए, और दूसरी तरफ उनके दिल का ये कीना बाहर निकलाया कि इसके भाई ने भी चोरी की थी, यानी हजरत यूसुफ के भाई ने भी चोरी की थी। ये इल्जाम उन्होंने उस वक्त से पाल के रखा हुआ था, जिसका मतलब यह है कि हो सकता है उनमें से कईयों के दिल में वाकईतन ये यकीन हो, तभी इतनी देर के बाद उनको ख्याल आया कि यूसुफ ने भी एक दफा चोरी की थी। और फिर हजरत यूसुफ के सामने खुदा तआला ने उनकी गर्दनें झुकाई और साबित कर दिया कि यूसुफ ने चोरी नहीं की थी। तो एक दयानतदारी के नतीजे में और खयानत के दागों से भी आपको पाक फरमाया गया। ये है आलिमुल गैब खुदा, जिसके साथ अगर आप ताल्लुक बांधें तो गैब में जैसा खुदा हमसे सुलूक फरमाता है, वैसा खुदा के बंदों से भी आप गैब में सुलूक फरमाना शुरू करें। और अगर आप गैब में खुदा के बंदों से वैसा सुलूक फरमाएंगे तो अल्लाह फिर अपने गैब से और नेमतें आपके लिए जाहिर करता है, जैसा कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के लिए हैरत अंगेज तरीक पर इनाम जारी नाज़िल फरमाए। तो गैब के मज़मून को गायब के मानों में ना समझें, गैब से आपकी आपका हाल भी फल पाता है, आपकी शहादत भी रौनक पाती है और आपका मुस्तकबिल भी आलिमुल गैब खुदा से ताल्लुक जोड़ने के लिए के नतीजे में संवरता है, अगर आप गैब का हक अदा करना खुदा से सीख लें और गैबूबियत में इस दुनिया में अमानत और सदाकत के हकूक अदा करना सीख लें। बहरहाल हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम अब ये फरमा यहाँ इस मौके पर फरमाते हैं कि तमाम रईयत कहज़दा हो जाए, अब किसी को क्या पता कि कल क्या होने वाला है, और बादशाह की बादशाहत उसके साथ ही जाती रहेगी। फरमाते हैं और कुछ नहीं तो अगर बगावत के आसार जाहिर हों और एक रईयत कहने लगे कि तुम्हें हम पर क्या फजीलत हासिल है और हम तुम्हारी बादशाहत को तस्लीम नहीं करते। अब ये वो बात है जो हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के विसाल के कुछ अर्सा बाद रूस में अमलन जाहिर हुई और जार की जारियत के जो टुकड़े उड़े हैं वो इसी ख्याल से, इसी बागियाना रविश के नतीजे में उड़े हैं, जिसका जिक्र हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जार भी होगा तो होगा उस घड़ी बहाल जार। तो गैब की खबरों के जिक्र में अल्लाह ताला आपकी जुबान से भी गैब की बातें जारी फरमा रहा था। फिर फरमाते हैं कि वो एकदम में तमाम मुल्क को फना करके और मखलूकात पैदा कर सकता है। ये जो इख्तियार है अल्लाह ताला का, ये उसे दूसरों के सामने झुकने से आजाद कर देता है। अगर बादशाह की रईयत उसे छोड़ जाए या बगावत कर जाए या मुल्क किसी और तरीके से मुसीबतों का शिकार हो जाए तो बराह रास्त बादशाह की बादशाहत खत्म होती है, क्योंकि वो कादिर नहीं है, तवाना नहीं है, खालिक नहीं है। मगर अल्लाह की बादशाहत को एक जर्रा भी फर्क नहीं पड़ सकता, अगर तमाम मखलूकात उसे रूगर्दानी करें तो वो उनसे बेहतर मखलूकात पैदा कर सकता है। और ये जो ख्याल है ये एक तसव्वुर की बात नहीं, कुरान करीम में बैन ही यही मजमून बयान हुआ है। अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐ बनी नौ इंसान, हम तुम्हें मुतनब्बे करते हैं कि अगर तुमने सही रविश इख्तियार ना की तो खुदा इस बात पर कादिर है कि तुम्हें फना कर दे और तुम्हारी जगह तुमसे बेहतर मखलूक बना लाए, और वो मखलूक ऐसी होगी कि फिर तुम्हारी तरह नाफरमानी नहीं करेगी बल्कि तुमसे बेहतर अखलाक का मुजाहरा करेगी। तो वो बादशाह जो ऐब से पाक है उसको किसी की हाजत नहीं है। बस खालिक होना और कादिर होना ये चूंकि ऐब से पाक होने की निशानी है, इसलिए हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने अल मलिकुल कुद्दूस के ज़िमन में दूसरी सिफात को बयान फरमाई, जिनका यहाँ बज़ाहिर जिक्र नहीं मिलता, लेकिन इन्हीं मज़कूरा सिफात से वो पैदा होती हैं। फरमाया बादशाह जो कुद्दूस हो, उसका लाजमन ये माना है कि हर ऐब से पाक है, और अल्लाह की बादशाहत ऐब से पाक हो नहीं सकती जब तक कि वो कादिर ना हो, जब तक कि वो खालिक ना हो, जब तक कि वो बदी ना हो। और इन तमाम सिफात के नतीजे में उसकी मलकियत हर ऐब से पाक बनकर उभरती है। बस जैसा कि मैंने एक दफ़ा पहले बयान किया था, सिफात की कूक से दूसरी सिफात फूटती हैं, और कुरान करीम में जो सूरह फातिहा में चार सिफात बयान हुई हैं, इन पर अगर आप गौर करें, यानी गहराई से गौर करें और दुआ के ज़रिए तौफीक मांगें, तो फिर आप हैरान रह जाएंगे ये देखकर कि इन सिफात से तमाम सिफात बारी तआला का ऐसा ही ताल्लुक़ है जैसा माँ का बच्चे से है। माँ की सिफात से जिस तरह बच्चा हासिल करता है और नई चीज़ लेकर नहीं आता, इसी तरह कुरान करीम की तमाम तर सिफात रब रहमान रहीम और मालिक यौमिद्दीन की सिफात के बच्चे हैं और इन्हीं से फूटते हैं। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर वो ऐसा खालिक और कादिर ना होता तो फिर बजू जुल्म के उसकी बादशाहत चल ना सकती। अब ये भी बहुत अहम मजमून है, कुद्दूस खुदा जो हर ऐब से पाक है, चूंकि उसका कादिर होना ज़रूरी है, उसका खालिक होना ज़रूरी है, इसलिए वो जुल्म से पाक है। और कोई बादशाह जो खालिक और कादिर ना हो, वो जुल्म करने पर मजबूर हो जाया करता है, मगर अल्लाह का जालिम ना होना उसकी अजीमुशान सिफात या मकदरतों के ताल्लुक के नतीजे में है। इसकी तशरीह हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, वो ऐसा खालिक और कादिर ना होता तो फिर वजूद जुल्म के उसकी बादशाहत चल ना सकती, क्योंकि वो और बहुत सी वजूहात के अलावा एक ये वजह बयान फरमाई है, क्योंकि वो दुनिया को एक मरतबा मुआफ़ी और निजात देकर फिर दूसरी दुनिया कहाँ से लाता, क्या निजात याफ्ता लोगों को दुनिया में भेजने के लिए फिर पकड़ता और जुल्म की राह से अपनी मुआफ़ी और निजात दही को वापस ले लेता। ये वो मज़मून है जिसका जिक्र आपको ब्राहिन अहमदिया में आर्यों के साथ बहस में मिलता है, और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने उसी मज़मून में खुदा ताला के हमेशा से होने ही की नहीं बल्कि खालिक होने की दलील निकाली है और बारी होने की दलील निकाली है। आप फरमाते हैं, जो शख्स नई चीज़ पैदा नहीं कर सकता और रूहें हमेशा से हैं जैसा कि आर्य समझते हैं, तो फिर जब उनको माफ़ कर दिया तो वो सब रूहें खुदा के दायरे इख्तियार से एक तरफ हटती चली जाएंगी, दायमी निजात हासिल करके उनको दोबारा दारुल अमल में नहीं भेजा जा सकता, और अगर भेजा जाए तो जुल्म होगा, एक हाथ से तो माफी दी, दूसरे हाथ से माफी वापस ले ली। तो खुदा ताला का जालिम ना होना इस बात का मुतकाजी है, इस बात का तकाजा करता है कि अल्लाह ताला एक मखलूक की बजाय जब चाहे दूसरी मखलूक पैदा कर सके। बस अगर एक मखलूक को माफी देकर दारुल अमल से हमेशा के लिए निजात बख्श दी है तो उसकी दुनिया मखलूकात से खाली नहीं हो सकती, क्योंकि वह नई पैदा करता चला जाता है, और ये उसके दायमी होने का एक सबूत है। वरना अगर वो एक दफ़ा रूहों को माफ़ी दे देता और जुल्म ना करता, तो चूंकि अजल का कोई किनारा नहीं है, इसलिए लाम उतना ही मुद्दत पहले, जिसका इंसान तसव्वुर भी नहीं बांध सकता, तमाम मखलूक खुदा के कब्जा कुदरत से बाहर निकल चुकी होती। और चूंकि ऐसा नहीं हुआ, इस वास्ते ये आलम कौनो मकान इस बात का गवाह है कि खुदा वो खुदा है जो हमेशा से मौजूद रूहों का मोहताज नहीं है, हमेशा से मौजूद मादे का मोहताज नहीं है, बल्कि जब चाहता है नई रूहें पैदा करता है, जब चाहता है नया मादा पैदा करता है। वो सिर्फ कुन कहता है और उसके इरादे से हर चीज वजूद में आ जाती है। ये वो मज़मून है जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने उसके ज़ालिम ना होने के मंतकी नतीजे के तौर पर बयान फरमाया है। फरमाते हैं, दुनिया के बादशाहों की तरह दागदार बादशाह होता तो दुनिया के लिए कानून, जो दुनिया के लिए कानून बनाते हैं बात बात पर बिगड़ते हैं, और अपनी खुदगर्जी के वक्तों पर जब देखते हैं कि जुल्म के बगैर चारा नहीं तो जुल्म को शीरे मादर समझ लेते हैं। अगर खुदा ऐसा होता तो फिर खुदा भी जुल्म के बगैर रह नहीं सकता था, क्योंकि बादशाहों का जुल्म उनकी बेख्तियारी के नतीजे में उनके लिए लाजिम हो जाता है। इस मज़मून की वजाहत करते हुए आप फरमाते हैं, मसलन एक जहाज को बचाने के लिए एक कश्ती के सवारों को तबाही में डाल दिया जाए और हलाक किया जाए तो ये बादशाह के लिए मजबूरी का फैसला है। और दुनिया की तमाम हुकूमतों में हमेशा से ये होता चला आया है और आज के ज़माने में भी यही होता है। जैसा कि हजरत यूनुस नबी जब कश्ती में सवार थे तो जब कश्ती डोली है और ख़तरा पैदा हुआ कि डूब जाएगी और एक शख्स का बोझ कम करना चाहिए तो वो कुर्रा हजरत यूनुस के नाम निकला। और है ये जुल्म कि एक मासूम आदमी को फेंक दिया जाए, बाकियों को क्यों ना फेंका जाए, किसको फेंका जाए किसको ना फेंका जाए। जहां वजह तरजीह बाकी ना रही वहां जुल्म शुरू हो गया। तो हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ये दुनियावी बादशाहों की बेख्तियारी की निशानी है, मजबूरी है। जब वो देखते हैं कि एक कश्ती के सवारों को हलाक करने से पूरे जहाज की सवारियां बच सकती हैं तो वो कहते हैं इसको कुर्बान कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर अल्लाह ताला के हाँ ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। फरमाते हैं, मगर खुदा को तो ये इस्तरार पेश नहीं आना चाहिए। बस अगर खुदा पूरा कादिर और अदम से पैदा करने वाला ना होता, अगर खुदा पूरा कादिर और अदम से पैदा करने वाला ना होता तो या तो कमजोर राजों की तरह, राज से मुराद यहां बादशाह या रियासतों के सरबराह हैं, कुदरत की जगह जुल्म से काम लेता या आदिल बनकर खुदाई को ही अलविदा कह देता, बल्कि खुदा का जहाज तमाम कुदरतों के साथ सच्चे इंसाफ पर चल रहा है। फिर फरमाया, अस्सलाम, यानी वो खुदा जो तमाम ऐबों और मसाइब से सख्तियों से महफूज है, महफूज ही नहीं बल्कि सलामती देने वाला है। अब वो बादशाह जो अपने इंसानी मजबूरियों की वजह से बार बार जुल्म का सहारा लेने पर मजबूर हो जाता है, जब मखलूक फाके कर रही है और उसको अपनी सल्तनत को बचाने के लिए ज़्यादा खर्च की ज़रूरत है तो ज़ालिमाना टैक्स भी लगाता है, कई तरह के हीले बनाकर वो आखिर अपनी मखलूक की तकलीफ़ के बिरते अपनी खुशी हासिल करता है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वो खुदा जो मलिकुल कुदूस है उससे चूंकि किसी जुल्म का कोई ख़तरा नहीं इसलिए उसके बाद फरमाया अस्सलाम, यानी वो खुदा सलाम है, खुद भी हर किस्म के खतरे से बाला और पाक है और तमाम मखलूक भी उसकी तरफ से हर किस्म के खतरे और तकलीफ से पाक और महफूज है। ये माना है अस्सलाम के, और सलाम को खुदा ताला ने मलिकुल कुद्दूस के साथ इसलिए जोड़ा है कि वो बादशाह जो हर किस्म के ऐब से पाक होगा उसकी तरफ से उसकी रियाया को कोई ख़तरा नहीं, वो लाजिमन अमन में है। वरना हर बादशाह जो नकायस रखता है उसकी रियाया को कभी कभी खुद उस बादशाह की तरफ से ख़तरा दरपेश होगा। और फिर इसके बरक्स भी दुरुस्त है, ऐसे बादशाह को कभी भी पूरी तरह अमन नसीब नहीं होता जो नकायत से पाक ना हो, और बसा औकात अपनी रियाया की तरफ से उसको खतरा दरपेश होता है। और जितने जुल्म बादशाहतों की तरफ मंसूब किए जाते हैं उसकी मरकजी वजह यही है। अगर शाहजहां ने अपने भाइयों की आंखें निकलवाईं और बाप को कैद किया और बड़े बड़े मजालिम के सलूक किए तो बहुत दागदार बनकर उसकी शख्सियत उभरती है औरंगजेब ने, लेकिन उसकी एक मजबूरी थी जो हर बादशाह के साथ लगी हुई है, क्योंकि वो उनकी तरफ से ना अपने बाप की तरफ से अमन में था ना अपने भाइयों की तरफ से अमन में था। तो अस्सलाम कहकर ये फरमाया कि मलिकुल कुद्दूस है, दागों से पाक बादशाह है, ये अपनी मखलूक की तरफ से अमन में है, इसको अपनी मखलूक की तरफ से कोई भी खतरा नहीं है, और चूंकि अपनी मखलूक की तरफ से इसको खतरा नहीं है इसका बरक्स भी दुरुस्त है कि इसकी मखलूक को भी उसकी तरफ से कोई खतरा नहीं है। बस वो असलाम है, कामिल सलामती है। और अगर किसी ने सलाम ढूंढना हो, नफ्स का सुकून तलाश करना हो, तमानियत हासिल करनी हो, दुनिया के खतरों से बचना हो और अपने शर से दूसरों को महफूज करना हो तो सलाम खुदा से उसका ताल्लुक जोड़ना लाजमी है। ये वो मजमून है जो इस इलाही सिफ्त या इसमें इलाही पर गौर करने से हमें समझ आती है। और याद रखने के लायक बात यह है कि इस्लाम का नाम लफ्ज़ सलाम ही से लिया गया है, जिसका मतलब यह है कि कोई मुसलमान उस वक्त तक मुसलमान कहलाने का मुस्तहिक ही नहीं जब तक कि वो सलाम खुदा से अपना ताल्लुक ना जोड़ ले, और जब वो सलाम खुदा से ताल्लुक जोड़ेगा तो बनी नौ इंसान उसके शर से महफूज हो जाएगी, और वो जिसके शर से बनी नौ इंसान महफूज हो जाए महज इसलिए कि उसने सलाम खुदा से ताल्लुक बांधा है तो अल्लाह रफ्ता रफ्ता उसको बनी नौ इंसान के शर से भी महफूज करता चला जाता है, और दिन ब दिन उसका सफर सलामती के बाद एक और सलामती की तरफ उठता है, और एक और सलामती के बाद फिर एक और सलामती में वो दाखिल होता है, और ये लामुतनाही सफर सलाम का सफर है। यहां तक कि इंसान जब मरने के बाद खुदा के हुजूर पेश होगा तो जन्नत में भी कुरान करीम फरमाता है कि सलाम के लफ्ज से उसका इस्तकबाल किया जाएगा, सलामुन कौलम मिन रब्बिर रहीम, रब रहीम की तरफ से उसको सलाम का पैगाम पहुंचेगा। क्योंकि अब वक्त खत्म हो चुका है इसलिए मैं इस पहलू पर एक चंद लफ्ज कहकर आपसे अब इजाजत चाहूंगा कि आपने भी दुनिया में सलाम खुदा की नुमाइंदगी करनी है, उसके बगैर ये दुनिया अमन का गहवारा बन नहीं सकती। जिन मुल्कों में आप हैं उनमें तरह तरह की बदअमनियां हैं, तरह तरह के खतरात हैं, एक इंसान दूसरे इंसान से महफूज नहीं, यहाँ तक के बाद मजलूम बच्चे अपने माँ बाप से भी महफूज नहीं जिनसे उनको सबसे ज्यादा हिफाजत की तवक्को होती है। चाइल्ड एब्यूज के केसेस आम हैं, चोरी, दगाबाजी, धोखा, फसाद, डाके, चंद पैसों की खातिर कत्ल, हर किस्म के जराइम जो दुनिया में फैलते हैं ये सलाम खुदा से दूरी के नतीजे हैं। बस आप चूंकि सलाम खुदा के नुमाइंदा हैं, जब तक आप सलाम से अपना ताल्लुक नहीं जोड़ते आप पर भी सलामती नाजिल नहीं हो सकती और आप दुनिया के लिए भी सलामती का मूजिब नहीं बन सकते। सलाम खुदा से ताल्लुक जोड़ने का ये तरीक नहीं कि आप लफ्ज़ सलाम सलाम को दोहराते रहें। सलाम खुदा के उस मज़मून पर गौर करें जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की तफसीर के हवाले से मैंने आपके सामने रखा है। तो लाजिम है कि अगर सलाम खुदा से आपको मोहब्बत और ताल्लुक है तो आप अपने लिए सलाम की सिफात अपनाने की कोशिश करेंगे। जो सिफात सलाम खुदा की आपके सामने रखी गई हैं उनको अपनी ज़ात में परख परख कर उलट पुलट कर देखते रहें कि वो सिफात आपकी ज़ात में मौजूद और महफूज हैं कि नहीं। अगर आपसे दुनिया को आज खतरा नहीं है और कल खतरा हो तो फिर सलाम से आपका कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि सलाम की सिफत जमाने से पाक है। बसा औकात ये होता है कि एक इंसान अच्छे हाल में है, खाता पीता है, वो अपने दोस्तों से जो मामले करता है उनको कोई खतरा नहीं होता, क्योंकि वो समझते हैं कि इसको जरूरत कोई नहीं है, बेवजह हमें तंग नहीं करेगा। मगर कल को हालात बदल जाते हैं, कल को उस पर ऐसी मुसीबत टूटती है कि वो मफलूकुल हाल हो जाता है। फिर भी अगर वो सलाम ही है और फिर भी अगर दूसरों के अमवाल को उसकी तरफ से कोई खतरा नहीं, तो ये वो ताल्लुक है जो उसका सलाम खुदा से कायम हो चुका है। और अगर ये ताल्लुक कायम हो जाए तो फिर इंतहाई तकलीफ के वक्त भी उसके लिए मायूस होने का कोई मकाम नहीं, क्योंकि वाकया है और इसमें एक जर्रा भर भी शक नहीं कि जो लोग खुदा यानी सलाम खुदा से ताल्लुक जोड़ते हैं उनकी हर बदमनी सलामती में तब्दील की जाती है। चुनाचे मुसलमानों से जो खुदा ने वादा फरमाया, आयत इस्तखलाफ में मजकूर है, उस वादे में ये बात मरकजी तौर पर बयान फरमाई कि लयुबद्दिलन्नहुम मिन बाद खौफहिम अमना, कि खुदा ये अहद करता है कि वो मुसलमान जो खिलाफत से वाबस्ता रहेंगे और अपने आप को खुदा का खलीफा समझते हुए उसके हक अदा करेंगे, हम उनके हर खौफ को अमन में तब्दील कर देंगे। बस ये सलाम खुदा से ताल्लुक है जिसकी ये जजा है, और दुनिया को आज सिफत सलाम की बेइंतहा जरूरत है। अंदरूनी तौर पर, बैरूनी तौर पर, घरों में, गलियों में, शहरों में, मुल्कों में, हर तरफ बदमनी फैलती चली जा रही है। बस आप सलाम बनेंगे तो दुनिया के लिए सलामती की कोई उम्मीद होगी। आप जो खुदा के नुमाइंदा हैं, अगर आपने सलाम बन करना दिखाया तो इस दुनिया के अमन के लिए कोई जमानत नहीं है। अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولا ذكر الله أكبر.